नमस्कार आदाब साथियों, हर स्टूडेंट के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी होती है उसकी परीक्षा, लेकिन इन परीक्षाओं से घबराना नहीं चाहिए। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हिंदी विषय के शिक्षक हैं, जो बता रहे हैं कि हमें हिंदी की परीक्षा की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो आइए सुनते हैं।
आगामी दशम वर्ग की परीक्षा निकट है और विद्यार्थियों द्वारा यह जिज्ञासा प्रकट की जा रही है कि हम हिंदी विषय की तैयारी कैसे करें। हिंदी 100 नंबर का है और यह हमारी मातृभाषा है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि विद्यार्थी मातृभाषा की तैयारी में पीछे पड़ जाते हैं। उन्हें यह लगता है कि मातृभाषा है, किसी न किसी तरह लिख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्तमान पैटर्न का जो प्रश्न पत्र है उसमें 50 अंक के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें लगभग 45% क्वेश्चन व्याकरण से पूछे जाते हैं। विद्यार्थियों को सबसे पहले व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय आदि की जानकारी लेनी है। उसके बाद रचना में संधि, समास, युग्म शब्द, मुहावरा, लोकोक्तियां, वाक्य शुद्धिकरण इत्यादि पर विशेष ध्यान देना है। अब रही बात पाठ्य पुस्तक की, तो पाठ्य पुस्तकों में जो कहानियां हैं, जो निबंध हैं, उन तमाम निबंधों को और कहानियों को पढ़ने के बाद विद्यार्थियों को यह समझ में आ गया होगा कि गद्य भाग से कौन ऐसा पाठ है जिसका कि अधिक से अधिक प्रश्न आने की संभावना है। सबसे पहले तो 2-3 कहानियां जो बहुत ही रोचक हैं, विद्यार्थियों को उन्हें छांट लेना चाहिए। जैसे विष के दांत, बहादुर और अविन्यो, नागरी लिपि, ये ऐसे पाठ हैं जिनसे कि अधिकतर प्रश्न आने की संभावना है। और पद्य भाग में घनानंद और रसखान भूषण तथा इसके बाद की जो आधुनिक नई कविताएं हैं उनको विशेष रूप से देखना है। साथ ही साथ यह भी देखना है कि जो अति लघुत्तरीय प्रश्न इनमें से कितने कितने उठ सकते हैं, उसको हम ऑब्जेक्टिव के रूप में, वस्तुनिष्ठ के रूप में लेंगे। और जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उन लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम इस हिसाब से छांटें कि जो आकर्षक और रोचक, जिसमें अभिव्यक्ति की परीक्षा होनी है, वो ऐसे प्रश्नों को हम छांट लें और उसके बाद हम उसकी तैयारी कर लें। जैसे उदाहरण के लिए अब नागरी लिपि वाला जो पाठ है उसको लिया जाए तो उसमें कई कई प्रश्न हैं। उसमें जैसे कि नागरी लिपि को सार्वदेशिक और सार्वकालिक क्यों कहा गया है, नागरी लिपि को नंदी नागरी क्यों कहा जाता है। आजकल ऐसे प्रश्नों की बहुलता होती है, ऐसे प्रश्न अधिकतर आते रहते हैं परीक्षा में। इसके अलावे हमें कविताओं के उन तमाम पंक्तियों को भी देखना है जिसमें कि आकर्षक पंक्तियां हैं, जिन पंक्तियों के अर्थ आते हैं, उन पंक्तियों की व्याख्याएं आती हैं, तो जो अच्छा लगे, या नहीं कहना है कि इम्पोर्टेंट, जो विद्यार्थी को अच्छा लग जाए वही आता है, क्योंकि व्याख्या की पंक्तियां सभी लोगों के समझ में आ जाती, चाहे विद्यार्थी हो और शिक्षक हो। तो इतने दिनों में आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ भी लिया होगा, क्योंकि व्याख्या की जैसे पंक्तियां हैं, अब देखिए कि है ना, हमारी एक कविता की भारत माता ग्राम वासिनी, तो उसकी जो निचली पंक्तियां हैं 4, वो व्याख्या के लिए आ सकती हैं। तो वैसे ही सभी कविताओं में कुछ न कुछ पंक्तियां ऐसी होती हैं जो देखने में ही लग जाती है कि अब यह व्याख्या में आने लायक है, वो देख लेंगे। और गद्यांश के जो प्रश्न उत्तर होंगे उसको अपनी भाषा में लिखने की कोशिश की जाएगी। यह नहीं कि गद्यांश से ही छांट करके पंक्ति निकाल लिया और उसी को लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। इन तमाम बातों पर ध्यान दे करके और सुस्पष्ट लिख करके, कॉपी में हमें उत्तर पुस्तिका में सुस्पष्ट लिखना है, ऐसा नहीं कि उलझाया हुआ और कुछ काट कूट। और जहां तक हो सके सभी प्रश्नों के उत्तर अगर हम सीरियल में दें तो बड़ी अच्छी बात होती है, है ना। इससे हमारे जो परीक्षक होते हैं वो बड़ी खुश होते हैं और कॉपी में 1-2-4 नंबर जो है वह यूं कहे कि बोनस के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो आशा है कि हमारी बातों पर ध्यान देकर के विद्यार्थी अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे और अच्छा अंक अर्जित करने का उनका जो एक मिशन है, उनका जो उद्देश्य है, निश्चित रूप से पूरा होगा। धन्यवाद।
तो दोस्तों, ऐसे ही हम आपके लिए लेकर आएंगे कुछ नई जानकारी अलग अलग विषयों पर। अगर आपके मन में किसी भी विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो जल्दी से रिकॉर्ड कराएं मोबाइल वाणी पर नंबर 3 दबाकर। और हाँ, इस गुरु मंत्र कार्यक्रम को मोबाइल वाणी ऐप पर लाइक बटन दबाकर पसंद करना मत भूलना। धन्यवाद।